अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंटली जो हमने फैमिलियल या ऑटो इन्फ्लेमेटरी क्राइपाइरिन एसोसिएट पीरियोडिक सिंड्रोम में कुछ चीज़ें याद रखनी है ना, जिसको हम एब्रिवेट कर रहे हैं कैप्स। तो कैप का निमोनिक आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा और कैप से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसका अपना ही नाम, कि जो कैप है ना, उसको बच्चों में किस मौसम में ज़्यादा पहनाते हैं, वो है विंटर सीजन। और जहाँ कहीं भी क्रायो पाइरीन का नाम आता है ना, स्पेशली क्रायो, इट मीन्स कोल्ड, तो ये वो ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स हैं जो कोल्ड से फ्लेयर अप होते हैं, बच्चों में प्रेजेंट करते हैं। मोस्टली कौन से बच्चे, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ द बर्थ, या फिर न्यू नेटल एज के अंदर प्रेजेंट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम्स और फीवर, सीवियर फटीग। और जैसे कि बच्चों को कोल्ड होता है ना, उस तरह की जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं सेम वही। और इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उसमें मेनली आपको अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड प्लाक्स मिलते हैं, जैसे कि बच्चों को सर्दी लगती है ना, इस तरह के अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड प्लाक्स, उसे आप याद रखो। या फिर जो हमने कोल्ड इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया पढ़ा था, उससे आप इसके लीजन याद कर सकते हो कि इसमें अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड प्लाक्स होते हैं। इसमें भी आपके पास जो साइटोकाइन रेस्ड होता है, दैट इज इंटरलेकिन वन, तो इस वजह से ट्रीटमेंट में भी हमने एनाकिंड्रा ही देना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मकल वेल सिंड्रोम। मकल वेल सिंड्रोम को आपने वेल से याद रखना है कि एक छोटा बच्चा है जो कि वेल के अंदर गिर गया है, और उसकी वजह से जो है ना, उसको पॉलीआर्थराइटिस हो गया है बिकॉज ऑफ फॉलिंग डाउन, उसको सिवियर फटीग हो रही है, और उसकी वजह से चूंकि वो बहुत ज़्यादा वेल के अंदर डीप गिर गया है, तो उसकी वजह से उसकी जो हेल्प के लिए कॉल है वो बाहर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, बिकॉज दे कैन नॉट हेयर हिम, सेंसरी न्यूरल डेफनेस। तो ये इसका एक निमोनिक है। उसके अलावा जो सिनका लिखा हुआ है ना, इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ कैप्स, जिसके अंदर सिवियर मैनिफेस्टेशंस आपको आती हैं। फीचर्स वही है कि इसमें आपको सिवियर मेनिनजाइटिस ऐड किया हुआ है, फेशियल डिसमॉर्फिक फीचर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली ये, आपके पास जो कैप्स और मकल वेल है ना, क्योंकि मोस्टली जो सिनेरियोज होते हैं वो इन्हीं के ही आते हैं, इसके सिवियर में फिर आप इसी के सिवियर मैनिफेस्टेशंस थोड़े से याद कर सकते हैं। ठीक है, जो एक टेबल मैं आपको एंड में शेयर करूँगी ना, उसके अंदर बहुत अच्छी आपको एक कंसाइज वे लिखा हुआ है, जिसमें आपको मोड ऑफ इनहेरिटेंस, एज ऑफ ऑनसेट, टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लेयर्स और डिस्टिंक्टिव थोड़े थोड़े फीचर्स और ट्रीटमेंट आपको मेंशन है। तो आपको वो टेबल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिवाइज करने के लिए, यानी अगर क्विकली आपने चीज़ों को रिवाइज करना है। तो इसमें देखिए, मकल वेल सिंड्रोम और जो आपके पास क्रायोपाइरिन एसोसिएटेड सिंड्रोम्स है ना, कैप्स, इसमें मेनली जो एज है ना, दैट इज़ चाइल्डहुड नियोनेटल इन्फेंसी, जबकि फैमिली मेडिटेरेनियन में हमने पढ़ा था कि अर्ली एडल्टहुड भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ड्रैप्स में भी। लेकिन ये वाले वो ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स हैं जो आपको सिर्फ चाइल्डहुड नियोनेटल इन्फेंसी इसी एज में मिलते हैं, और इनकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। देखिए इसमें मेंशन है कि 24 आवर्स में ही वो रिजॉल्व हो जाते हैं मैनिफेस्टेशंस। और क्रायो से आपने याद रखना है कि इट इज़ कोल्ड एक्सपोजर से होता है, लेकिन जब हम इसमें टेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर आप इसमें आइस एक्सपोजर करेंगे तो मैनिफेस्टेशंस वो नहीं आएंगी, क्योंकि मोस्टली कोल्ड एयर से जब आप एक्सपोज करते हैं ना ऐसे पेशेंट्स को, तो फिर उनमें फ्लेयर अप्स आते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आती है कि वो जो कैप्स वाले मैंने बात बताई थी ना, कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कोल्ड एयर से ही ज़्यादा उनको उनको बीमारी हो जाती है, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी जो सिवियरेस्ट फॉर्म है ना, वो कंटिन्यूअस मैनिफेस्टेशंस के साथ आते हैं, यानी उसमें कंटिन्यूअस फ्लेयर अप्स होते रहते हैं, सेम गोज फॉर द मकल वेल। लेकिन जो फैमिलियर क्रायोपाइरिन है, वो जो फ्लेयर अप होता है तो 24 आवर्स के अंदर सेटल भी हो जाता है। बाकी इसकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी कि इंटरलेकिन वन यानी एनाकिंड्रा हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं।